हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और जैसे ही वो बूढ़ी दादी वहां आई, करिश्मा जी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और उस बूढ़ी दादी का गला जोर से पकड़ लिया। तारा हैरानी से उन्हें देखने लगी और बोली, मॉम, आप ये क्या कर रही हैं? ये एक बूढ़ी दादी है, आप उनकी जान लेने पर क्यों उतारू हो रही हैं? करिश्मा जी बुढ़िया का गला दबाते हुए बोली, बेटी, तुम नहीं जानती हो, ये औरत बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वर्षों पहले जो कारी शक्तियों और जिन्नातों, सफ़ेद जिन्नातों के बीच युद्ध हुआ था, उस युद्ध में ये भी शामिल थी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये उस युद्ध में बच कैसे गई। मुझे तो लगा था बाकी लोगों के साथ इसकी भी जान चली गई होगी, लेकिन अच्छा हुआ ये बच गई। ऊपर वाले को मुझ पर रहम आ गया, क्योंकि इसे अपने हाथ से मारने की मैंने कसम खाई थी। करिश्मा जी बुढ़िया का गला और जोर से दबाते हुए बड़े ही गुस्से से बोल रही थीं। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करिश्मा मॉम को क्या हो गया है, वो इस तरह से क्यों बोल रही हैं। तब वो बुढ़िया टूटी पूटी आवाज में बोली, मैं जानती हूँ जिन्नों की महारानी, तुमने मुझे पहचान लिया है, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ, अब मैं बदल चुकी हूँ। इस बुढ़ापे ने मुझे पूरा पूरा बदल कर रख दिया है। पहले मैं एक महत्वाकांक्षी औरत हुआ करती थी, लेकिन अब मैं बदल चुकी हूँ। अब मेरे पास किसी तरह की कोई काली शक्ति भी नहीं है। उसने अपनी आंखों में झूठे आंसू ले आए, जिन्हें देखकर तारा का दिल पिघलने लगा और उसने करिश्मा जी को रोकते हुए कहा, मॉम, आप इनको कुछ मत कीजिए, आप रुक जाइए मॉम, आपको मेरी कसम है। तारा को करिश्मा जी को रोकने के लिए अपनी कसम का वास्ता देना पड़ा था। करिश्मा जी उस बुढ़िया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती थीं, वो हर कीमत पर उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन तारा ने उन्हें मजबूर कर दिया था, जिसकी वजह से अब उस बुढ़िया को उन्हें छोड़ना पड़ा। करिश्मा जी ने जैसे ही बुढ़िया का गला छोड़ा, वो जोर से सांस लेने लगी और खांसते हुए बोली, जिन्नू की महारानी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन अब मैं पहले जैसी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। ऐसा कहकर वो करिश्मा जी के सामने गिड़गिड़ाने लगी थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गई थी कि अगर करिश्मा चाहेंगी तो इसी वक्त उसकी जान ले सकती थी। उस बुढ़िया को इस तरह से गिड़गिड़ाता देख तारा को उस पर काफी ज्यादा तरस आ रहा था, इसीलिए उसने बुढ़िया के हाथों को पकड़कर उसे उठा दिया। और जैसे ही उसने उस बुढ़िया को उठाया, बुढ़िया ने तारा को छुआ। बुढ़िया समझ गई थी कि इसके अंदर ही जिन महाराज का वंशज पल रहा है, जिस वंशज के खून की उसे तलाश है। तब वो बुढ़िया करिश्मा से उस बच्चे को गोद में लिए हुए बोली, ये बच्चा मुझे सड़क के किनारे पड़ा मिला था और तब से मैं इस बच्चे की देखभाल कर रही हूँ। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, अकेले इस बच्चे को पाल रही हूँ और इसी के सहारे मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। उन लोगों को इतना परेशान देखकर तारा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसका दिल हमेशा से ही बहुत ही ज्यादा नाजुक था। किसी का भी दुख दर्द वो सहन नहीं कर पाती थी और अपनी शक्तियों के द्वारा उसके दुख दर्द को दूर कर दिया करती थी, लेकिन करिश्मा जी के सामने अब वो उस बूढ़ी औरत का दुख नहीं कर सकती थी, इसीलिए मजबूरन उसे करिश्मा जी के साथ जाना पड़ा। तारा भी करिश्मा जी के साथ चल पड़ी। जैसे ही वो दोनों वहां से गईं, वो बूढ़ी औरत उस बच्चे को हाथ में लेकर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, सफ़ेद जिन्नों की महारानी, आज तूने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और मैं वादा करती हूँ, इस गलती का तुझे बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। क्योंकि आज उस बूढ़ी औरत ने तारा को छूने के बहाने से जिन्नों के वंशज को भी छू लिया था और बस उसे अब जल्दी ही जिन्नों के वंशज का इंतजार था, क्योंकि एक जिन्नों का वंशज ही था जिसका खून पीकर वो एक बार फिर से महाशक्तिशाली बन सकती थी, साथ ही साथ वो अपनी जवानी सुंदरता वापस पा सकती थी, इसीलिए उसे जिन्नों के वंशज की तलाश थी। काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ काली शक्तियों और सफ़ेद जिन्नों के बीच की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभा रही थी। वो काली शक्तियों के गुरु के लिए काम किया करती थी। इतना ही नहीं, उसने एक बार अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाकर एक सफ़ेद जिन को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। वो सफ़ेद जिन कोई और नहीं बल्कि अमन के पिताजी थे। एक बार अमन के पिताजी एक काली शक्ति का पीछा करते हुए जंगल में काफ़ी आगे तक चले गए थे। उन्हें काली पहाड़ी का एहसास ही नहीं रहा था। उसी वक्त काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ, जो उस वक्त जवान और बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, उसने सफ़ेद जिन्नों के वंशज को देख लिया था। वो कोई और नहीं, अमन के पिता थे। अमन के पिता को देखते ही वो उन पर मोहित हो गई थी और वो उनके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी। और जब अमन के पिताजी गहरे घने जंगल में आ गए, तभी वो अचानक कम कपड़े पहनकर अमन के पिताजी के सामने आई। अमन के पिताजी भी सब कुछ भूलकर उसकी ओर आकर्षित हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। अपनी ओर आकर्षित करके उसे जंगल में बड़े से पत्थरों के पीछे ले गई थी और फिर वहाँ उसी दिन जंगल में उसने उनके साथ जिस्मानी रिश्ता बना लिया था, जिसकी वजह से अमन के पिता पर एक श्राप लग चुका था। वो श्राप था कि वो कई सालों तक काली शक्तियों की गुलामी करेंगे, क्योंकि उन्होंने एक काली शक्ति औरत के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया था, वो भी बिना विवाह के, जो कि काली शक्तियों के नियम के सख्त खिलाफ था। इसीलिए उसकी सजा के रूप में उन्हें अपने परिवार से दूर रहकर कई वर्षों तक काली शक्तियों की गुलामी करनी पड़ेगी। और इसीलिए जिस वक्त अमन के पिताजी अमन को टहलाने के लिए बगीचे में लेकर गए थे, ठीक उसी वक्त काली शक्तियों के गुरु ने अपनी एक महापिशाचिनी हिडिम्बा के द्वारा अमन के पिता को अगवा करवा लिया था। जो कि अमन के पिताजी ने गलती की थी, तो इसीलिए चाह कर भी अमन के दादा जिन महाराज अमन के पिताजी को नहीं बचा पाए थे, वो उस वक्त केवल अमन को ही बचा पाए थे और अपने बेटे के लिए वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे। और इतना ही नहीं, सफ़ेद जिन्नों के साथ रिश्ता बनाने के कारण काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ को काली शक्तियों के गुरु ने श्राप दे दिया था और उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली थीं। और जिस खूबसूरती पर उन्हें गुमान था, उनकी वो सारी खूबसूरती भी वापस छीन ली थी। और जब उन्होंने काली शक्तियों के हाथ पैर जोड़े थे और उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी, तब जाकर उन पर रहम आया था और तब उन्होंने अपनी श्राप से मुक्ति का एक उपाय बताया था। वो उपाय था जिन्नों के वंशज का खून पीना। अगर वो जिन्नों के वंशज का खून पी लेती हैं, तो वो इस श्राप से मुक्त हो सकती है, तो वो वापस से खूबसूरत और अपनी शक्तियों की मालकिन बन जाएगी। इसीलिए अपनी बदसूरत शक्लो सूरत को लेकर वो जंगल में टहलने लगी थी और फिर मलिका के साथ उसने सौदा कर लिया था। तब उस काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ ने अपने दूध पीते बच्चे को काली शक्तियों के गुरु के हवाले कर दिया था और वो बच्चा बड़ा होकर काली शक्तियों का मालिक अमित बन गया था।
करिश्मा और तारापरी हर चुनौतियों का सामना करती हुई आगे बढ़ रही थीं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो काली पहाड़ी के करीब जा रही थीं, वैसे वैसे उनके लिए चुनौतियां बढ़ती ही जा रही थीं। क्योंकि पहले तो उन्हें काली शक्तियों के मालिक अमित की माँ मिल गई थी, लेकिन वहाँ से वो आगे बढ़ चली थीं। और वैसे भी अमित की माँ तारा को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी, क्योंकि उसके पेट में उसकी जवान होने का और अपनी शक्ति वापस पाने का राज छुपा हुआ था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों के गुरु को जैसे ये एहसास हो ही गया था कि उनका पहला महारक्षक कवच भंग हो चुका है, इसीलिए उन्होंने सर्प महाराज को अपने पास बुलाया था और सर्प महाराज से कहा था कि आज वो समय आ गया है जब तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मिल सकती है। तुम्हें मेरे एक महारक्षक की जगह लेनी होगी, जो कि मेरे बनाए गए एक खास मंत्रों का द्वार है। जैसे ही सर्प महाराज ने उसकी ये बात सुनी, तब उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। साथ ही साथ वो इस बात को लेकर खुश भी हो रहा था कि अब उसका हमेशा हमेशा के लिए काली शक्तियों के गुरु से पीछा छूट जाएगा। वो तो इसी चक्कर में था कि काली शक्तियों का गुरु जल्द से जल्द कोई काम दे और वो काम उसका करे, फिर वो उसके श्राप से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। अब जल्दी ही उसे वो काम मिल चुका था, लेकिन सर्प महाराज को इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाज़ा नहीं था कि काली शक्तियों का गुरु जिस मंत्रों के रक्षा के पहले द्वार पर उसे पहरेदारी को भेज रहा था, उसे भेदने के लिए कोई और नहीं बल्कि तपस्वी महाराज की बेटी तारापरी आ रही थी। सर्प महाराज को काम सौंपने के बाद साथ ही साथ काली शक्तियों के गुरु ने तप करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अपने महारक्षक को खोजना चाहते थे कि आखिर उनका महारक्षक, जो कि काला नाग था, वो कहाँ गायब हो गया था। क्योंकि उन्हें हर हाल में अपने उस काले नाग का पता लगाना था, क्योंकि वो काला नाग भी कम शक्तिशाली नहीं था। काली शक्तियों के गुरु के दिए हुए काफी सारे महत्वपूर्ण शक्तियाँ उसके पास थीं, तो इसीलिए वो उसका पता भी लगाना चाहते थे। और जल्दी ही तप के द्वारा उन्होंने पता लगा लिया था कि जंगल में ही उनका वो काला नाग पत्थर की मूर्ति में बदल चुका था। जैसे ही काली शक्तियों के गुरु ने काले नाग को पत्थर की मूर्ति में देखा, तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था।